एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार,
मैं हूँ मेजबान दो।
और मैं मेजबान एक।
और आज हम बात कर रहे हैं सूजन ब्लैकमोर की किताबों के बारे में, खास करके कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इनमें ना चेतना को लेकर कुछ बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार हैं।
और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों लगता है? शायद इसलिए कि चेतना आप देखें तो विज्ञान और फिलॉसफी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, मतलब अनसुलझी पहेली।
हाँ बिल्कुल।
ये हमारी अपनी पहचान, हमारे होने का एहसास, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, इन सब सवालों से सीधे जुड़ा है। हम सोचते हैं कि भाई हम अपने अनुभवों के मालिक हैं, पर क्या वाकई ऐसा है?
सही कहा। और यहीं पर सूजन ब्लैकमोर आती हैं। उनके विचार हमारी ये जो आम समझ है ना, उसे पूरी तरह से हिला देते हैं। वो कहती हैं कि जिसे हम अपनी चेतना समझते हैं, अपना स्व या सेल्फ, ये जो अंदर से आवाज़ आती है, मैं कुछ अनुभव कर रही हूँ, वो शायद एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक ग्रैंड इल्यूजन।
ग्रैंड इल्यूजन सुनने में कितना अजीब लगता
है ना? चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन पहले ये जान लें कि ये विचार आखिर हैं किसके। सूजन ब्लैकमोर हैं कौन? तो वे एक जानी मानी ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हैं, लेक्चरर हैं, लेखिका हैं। उन्होंने चेतना पर, मीम्स पर,
मीम्स यानी वो इंटरनेट वाले नहीं बल्कि विचारों के फैलने का तरीका,
हाँ बिल्कुल, विचारों और सांस्कृतिक इकाइयों के फैलने का तरीका और परामनोविज्ञान मतलब पैरासाइकोलॉजी, इन विषयों पर काफी काम किया है।
हाँ। और उनकी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था परामनोविज्ञान के शोध से, मतलब वो ईएसपी जिसे छठी इंद्री कहते हैं, या शरीर से बाहर निकलने के अनुभव, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, इन चीज़ों की वैज्ञानिक जांच कर रही थी। और मज़े की बात यह है कि शुरुआत में वो इन पर कुछ हद तक यकीन भी करती थी।
अच्छा।
हाँ, लेकिन फिर कई साल उन्होंने इस पर शोध किया, बहुत मेहनत की, पर जब उन्हें इन असाधारण दावों के लिए कोई ठोस पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला, तो उनका नज़रिया पूरी तरह बदल गया। वो एक तरह से विश्वासी से ब्रिटेन की सबसे जानी मानी संदेहवादियों, स्केप्टिक्स में से एक बन गईं।
तो ये बदलाव ही उन्हें काफी अनोखा बनाता है, मतलब उनके पास वैज्ञानिक जांच परख की सख्ती तो है ही।
हाँ, रिगर जिसे कहते हैं।
हाँ, रिगर, लेकिन साथ ही चेतना को अंदर से समझने की कोशिश का अनुभव भी है, क्योंकि वे कई सालों से जेन मेडिटेशन ध्यान का अभ्यास भी करती रही हैं।
सही बात है। तो ये जो मेल है, एक वैज्ञानिक दिमाग और ध्यान का निजी अनुभव, और साथ में अपनी ही पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने की हिम्मत, ये उन्हें चेतना जैसे पेचीदा विषय पर बात करने के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय आवाज बनाता है।
तो उनकी किताबों का निचोड़ क्या है, मतलब मेन बात क्या है?
मूल बात यह है कि वे चेतना के बारे में हमारी जो रोजमर्रा की एक सहज समझ है ना, उसको चैलेंज करती हैं। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि भाई हमारी चेतना एक लगातार बहती नदी की तरह है, अंदर एक पूरी दुनिया है, समृद्ध है, और एक स्थायी मैं है जो ये सब अनुभव कर रहा है।
हाँ, जैसे कोई अंदर बैठकर स्क्रीन पर फिल्म देख रहा हो।
बिल्कुल। ब्लैकमोर कहती हैं, रुकिए, शायद ऐसा है ही नहीं जैसा हमें लगता है। हाँ, उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि ये जो अंदर एक मैं बैठा लगता है ना, और ये जो अनुभवों का लगातार भरा पूरा एहसास है, ये असल में एक भ्रम है, एक कहानी है जिसे हमारा दिमाग रचता है।
एक कहानी।
हाँ, चेतना कोई चीज नहीं है जो हमारे दिमाग में कहीं रखी है, बल्कि ये एक गतिविधि है, एक प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है। दिमाग जैसे बिखरे हुए पलों को जोड़कर एक मतलब बनाता है, कहानी सुनाता है।
और वे चेतना की वो जो मशहूर कठिन समस्या है, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, उस पर भी सवाल उठाती हैं।
हाँ, ये हॉट प्रॉब्लम क्या है थोड़ा बताएं?
ये समस्या पूछती है कि दिमाग, जो कि एक भौतिक चीज है, खून, मांस, न्यूरॉन्स, उससे व्यक्तिपरक अनुभव कैसे पैदा होता है? मतलब सेब का लालपन देखना तो ठीक है, पर वो लालपन कैसा लगता है?
अच्छा, वो फीलिंग।
हाँ, वो निजी एहसास।
या
संगीत सुनकर खुशी कैसी महसूस होती है, ये जो निजी अनुभव हैं जिन्हें क्वालिया कहते हैं, ये आखिर इस भौतिक दिमाग से पैदा कैसे होते हैं? ब्लैकमोर का इशारा है कि शायद ये समस्या इसलिए इतनी कठिन लगती है क्योंकि हम शुरू से ही चेतना को गलत समझ रहे हैं।
बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। चलिए उनके तर्कों को थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कि हम दुनिया को देखते सुनते कैसे हैं, यानी हमारी धारणा, हमारा परसेप्शन। हमें लगता है ना कि हम अपने आसपास की दुनिया को एकदम हाई डेफिनेशन वीडियो की तरह देख रहे हैं, सब कुछ साफ, डिटेल्ड, लगातार।
हाँ बिल्कुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर।
लेकिन ब्लैकमोर कहती हैं कि ये हमारी आंखों का धोखा है, या कहें दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम। मनोविज्ञान में कई प्रयोग हैं, जैसे वो चेंज ब्लाइंडनेस वाला।
हाँ, चेंज ब्लाइंडनेस, वो बड़ा मज़ेदार है। उसमें दिखाते हैं कि अगर हमारा ध्यान कहीं और हो ना, तो हमारी आंखों के ठीक सामने बड़े बड़े बदलाव हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता।
अच्छा, जैसे कि
कोई उदाहरण? हाँ, एक क्लासिक प्रयोग है उसमें। एक व्यक्ति सड़क पर किसी अजनबी से रास्ता पूछ रहा होता है। बात करते करते बीच में दो लोग एक बड़ा सा दरवाजा लेकर उनके बीच से गुजरते हैं। दरवाजा हटता है तो रास्ता पूछने वाला व्यक्ति बदल चुका होता है।
क्या बात कर रहे हैं?
हाँ, और रास्ता बताने वाले आधे से ज्यादा लोग इस बदलाव को नोटिस ही नहीं करते। उन्हें लगता है वो उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं।
कमाल है।
तो इसका मतलब हम असल में उतना देख ही नहीं रहे होते जितना हमें लगता है।
बिल्कुल, ये जो लगातार दुनिया दिखने का एहसास है, ये सच नहीं है। हमारी आंखें असल में लगातार तेजी से झटके लेती रहती हैं, उन्हें सिकैड्स कहते हैं, और हर झटके के बीच एक बहुत छोटे से पल के लिए हम लगभग अंधे होते हैं।
अंधे?
हाँ, लगभग। दिमाग क्या करता है, वो इन बिखरी हुई तस्वीरों को लेता है, बीच की खाली जगहों को भरता है, और एक स्थिर पूरी दुनिया का भ्रम रच देता है। जैसे वीडियो एडिटिंग होती है ना।
हाँ हाँ, कुछ वैसा ही दिमाग लगातार कर रहा है। तो हमारा अनुभव असलियत की हूबहू कॉपी नहीं है, बल्कि दिमाग का बनाया एक वर्किंग मॉडल है, काम चलाओ मॉडल। हमारी अंदरूनी दुनिया उतनी भरी पूरी नहीं है जितनी हमें लगती है।
इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अंदरूनी भावनाओं और विचारों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, जिसे हम अंतर्दृष्टि या इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं।
ब्लैकमोर के हिसाब से हाँ, हमारी अंतर्दृष्टि भी धोखा दे सकती है। हम सोचते हैं कि हम अपने मन को सीधे सीधे जानते हैं, पर शायद वो भी दिमाग की रची एक और कहानी हो।
ये बात हमें दिमाग और चेतना के रिश्ते पर ले आती है। आजकल न्यूरोसाइंसेस बारे में क्या कह रहा है?
वैज्ञानिक आजकल ये जानने में लगे हैं कि चेतना से जुड़ी दिमागी गतिविधियां कौन सी हैं। इन्हें कहते हैं न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, या NCCs।
अच्छा, NCCs।
हाँ, वो FMRI या EEG जैसी मशीनों से देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ महसूस करता है या किसी चीज के प्रति सचेत होता है, तो दिमाग के कौन से हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं।
इसमें कुछ पता चला है?
हाँ, काफी प्रगति हुई है। हमें पता चल रहा है कि कौन सी दिमागी प्रक्रियाएं चेतना के साथ साथ चलती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुश्किल है। हमें सहसंबंध मिलता है, कोरिलेशन, पर कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता।
मतलब
ये कि अगर दिमाग का कोई हिस्सा किसी अनुभव के समय एक्टिव है, तो जरूरी नहीं कि वही हिस्सा उस अनुभव को पैदा कर रहा हो। हो सकता है वो बस उसके साथ जुड़ा हो। कारण क्या है, ये अभी भी साफ नहीं है।
हाँ, ये तो है। और एक और पहेली का जिक्र होता है अक्सर, बाइंडिंग प्रॉब्लम।
हाँ, बाइंडिंग प्रॉब्लम, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, दिमाग अलग अलग जानकारी, जैसे किसी चीज का रंग, उसका आकार, उसकी आवाज, वो कहाँ है, ये सब अलग अलग हिस्सों में प्रोसेस करता है।
ठीक है,
तो फिर ये सारी अलग अलग जानकारी जुड़कर हमें एक सिंगल यूनिफाइड अनुभव कैसे देती है? हमें एक लाल गेंद लुढ़कती ही दिखती है और सुनाई देती है। ऐसा नहीं होता कि लालपन कहीं और महसूस हो, गोलापन कहीं और लुढ़कने की आवाज कहीं और से आए।
हाँ, सब एक साथ होता है।
ये सब जुड़ता कैसे? दिमाग इन सबको एक साथ कैसे बांधता है? ये है बाइंडिंग प्रॉब्लम। इसका भी पक्का जवाब अभी नहीं है।
तो इन सवालों के जवाब देने के लिए कुछ थ्योरीज भी होंगी, चेतना के सिद्धांत।
हाँ, कई हैं। एक काफी मशहूर है, ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी। ये चेतना की तुलना एक तरह के स्टेज या मंच से करती है।
स्टेज?
हाँ, जिस पर जरूरी जानकारी को लाया जाता है स्पॉटलाइट में, ताकि दिमाग के बाकी हिस्से उसे देख सकें और उस पर मिलकर काम कर सकें। जो जानकारी स्टेज पर है, वही चेतन है।
अच्छा,
लेकिन आपने कहा था ब्लैकमोर को कोई और थ्योरी ज्यादा पसंद है, डेनियल नेट वाली।
हाँ, ब्लैकमोर दार्शनिक डेनियल डेनेट के मल्टीपल ड्राफ्ट्स मॉडल को ज्यादा मानती हैं, और ये ग्लोबल वर्कस्पेस से काफी अलग है।
कैसे अलग है?
डेनेट कहते हैं कि दिमाग में कोई एक सेंट्रल स्टेज या चेतना का थिएटर है ही नहीं। कोई एक जगह नहीं है जहां सब कुछ चेतन होता है।
तो फिर क्या होता है? उनके अनुसार दिमाग में एक साथ कई समानांतर प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जैसे किसी कहानी या रिपोर्ट के कई अलग अलग ड्राफ्ट एक साथ तैयार हो रहे हों।
मल्टीपल ड्राफ्ट्स।
हाँ, ये ड्राफ्ट्स लगातार बदलते रहते हैं, एडिट होते रहते हैं, एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं। जब कोई एक ड्राफ्ट कुछ समय के लिए ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने लगता है, तो उसी को हम चेतना कह देते हैं।
कोई एक दर्शक नहीं है जो ये सब देख रहा है, कोई एक शो नहीं चल रहा, बस ये बिखरी हुई बदलती हुई प्रक्रियाएं हैं।
अगर ऐसा है, कोई सेंट्रल स्टेज नहीं, कोई दर्शक नहीं, तो फिर वो मैं कौन है जो अनुभव कर रहा है? ये तो सीधे स्व के विचार पर चोट है।
बिल्कुल, और यहीं हम ब्लैकमोर के सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले विचार पर आते हैं, स्व का विखंडन, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ।
हम सबको ये कितना गहरा एहसास होता है ना कि हमारे अंदर एक स्थायी मैं है, एक तोर है जो सोचता है, महसूस करता है, फैसले लेता है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वही रहता है।
हाँ बिल्कुल, मेरी पहचान।
ब्लैकमोर कहती हैं कि ये स्थायी, ये एकात्मक न, ये एक भ्रम है, एक कहानी है जिसे हमारा दिमाग लगातार बुनता रहता है।
ये तो मतलब सुनने में ही बहुत अजीब है। क्या मतलब मैं असल में हूं ही नहीं?
हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। वो काफी हद तक 18वीं सदी के दार्शनिक डेविड ह्यूम की तरह सोचती हैं। ह्यूम ने कहा था कि जब वो अपने अंदर झांकते हैं तो उन्हें कोई एक स्थायी स्व नहीं मिलता।
तो क्या मिलता है?
उन्हें बस विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह मिलता है, एक बंडल।
ब्लैकमोर मानती हैं कि स्व इसी क्षणिक बंडल का नाम है जिसे हम गलती से स्थायी समझ लेते हैं।
लेकिन अगर ये सिर्फ एक बंडल है, एक प्रवाह है, तो हमें ये एकता और स्थायित्व का एहसास क्यों होता है? क्या इसका कोई सबूत है कि स्व वाकई एक भ्रम है? एक बहुत दिलचस्प उदाहरण स्प्लिट ब्रेन मरीजों का है।
स्प्लिट ब्रेन, वो क्या होता है?
मिर्गी के बहुत गंभीर मामलों में कभी कभी डॉक्टर दिमाग के दो हिस्सों, दो हेमिस्फीयर्स को जोड़ने वाली नसों का जो बंडल होता है ना, कॉर्पस कैलोसम, उसे काट देते हैं दौरे रोकने के लिए।
अच्छा,
इसके बाद क्या होता है वो हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है जैसे उस एक व्यक्ति के अंदर दो अलग अलग चेतनाएं काम कर रही हों,
जिनकी अपनी अपनी जानकारी होती है, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं।
दो चेतनाएं एक ही शरीर में।
हाँ,
जैसे एक हाथ कुछ उठाना चाहता है तो दूसरा हाथ उसे रोक देता है, या एक हेमिस्फीयर को कुछ दिखाया जाए तो वो उसे पहचानता है पर दूसरा नहीं। ये दिखाता है कि स्व की जो एकता हमें महसूस होती है वो कितनी नाजुक है और दिमाग की फिजिकल बनावट पर कितनी निर्भर है।
आपने डेनेट के नैरेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र किया था, वो क्या है?
हाँ, डेनेट कहते हैं स्व एक नैरेटिव सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे किसी कहानी का एक केंद्र होता है, एक मुख्य पात्र जिसके चारों ओर सारी घटनाएं घूमती हैं। डेनेट कहते हैं स्व भी कुछ ऐसा ही है। ये काल्पनिक केंद्र है जिसे दिमाग अपनी और दुनिया की कहानी को समझने और सुनाने के लिए गढ़ता है। ये सामाजिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम दूसरों को बता सकते हैं कि मैंने क्या किया या मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन ये कोई असल चीज नहीं है, बस एक उपयोगी कहानी है।
ये तो बौद्ध दर्शन के अनात्मन या नो सेल्फ के विचार जैसा लगता है।
बिल्कुल, बौद्ध दर्शन में भी तो यही कहा गया है कि कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है, बस लगातार बदलते हुए तत्वों का प्रवाह है। तो ये विचार नया नहीं है, पर विज्ञान अब इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, अगर स्व ही एक कहानी है, एक भ्रम है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या? फ्री विल, हमारे फैसले कितने हमारे हैं?
हाँ, ये एक और बड़ा सवाल है जिस पर ब्लैकमोर और डेनेट जैसे विचारक सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्र इच्छा का जो हमें एहसास होता है कि मैंने ये करने का फैसला किया, वो भी शायद एक भ्रम ही है।
ये भी भ्रम?
हाँ, यहाँ वे बेंजामिन लिबेट के वो मशहूर प्रयोगों का जिक्र करते हैं। लिबेट ने लोगों को कहा कि जब उनका मन करे वे अपनी उंगली उठाएं और नोट करें कि उन्होंने ये फैसला कब किया।
ठीक है।
और साथ में वो उनके दिमाग की एक्टिविटी ईईजी से माप रहे थे। उन्होंने पाया कि लोगों के ये एहसास करने से कि अब मैं उंगली उठाऊंगा या उठाऊंगी, उससे लगभग आधा सेकंड पहले ही उनके दिमाग में एक खास तरह की गतिविधि शुरू हो जाती थी जिसे रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं।
क्या मतलब, दिमाग ने पहले ही तय कर लिया और हमें बाद में लगा कि मैंने तय किया?
हाँ, इसकी एक व्याख्या यही की जाती है कि दिमाग अवचेतन रूप से क्रिया शुरू कर देता है और फिर कुछ मिलीसेकंड बाद चेतना को ये लगता है कि मैंने ये करने का फैसला किया, जैसे चेतना उस फैसले का कारण नहीं बल्कि नतीजा हो।
तो हमारा चेतन मन ड्राइवर नहीं बल्कि
कमेंटेटर है, जो बस ये बता रहा है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, चला नहीं रहा। अब ये व्याख्या भी विवादित है, पर ये हमारी फ्री विल की धारणा पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है।
बाप रे, ये सब तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। अच्छा, क्या चेतना की जो बदली हुई अवस्थाएं होती हैं, ऑल्टर्ड स्टेट्स, जैसे सपने, ध्यान या साइकेडेलिक ड्रग्स का असर, क्या वो इस पहेली को समझने में कुछ मदद कर सकती हैं?
ब्लैकमोर मानती हैं कि हाँ, ये अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाती हैं कि हमारी ये जो सामान्य जागी हुई चेतना है, वही चेतना का एकमात्र रूप नहीं है और ये कितनी आसानी से बदल सकती है। सपने सोचिए, दिमाग बिना किसी बाहरी इनपुट के, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, फिर भी पूरी की पूरी दुनिया बना लेता है। लोग, जगहें, भावनाएं, कहानियां, सब कुछ। इससे पता चलता है कि दिमाग कितना शक्तिशाली कहानीकार है, भ्रम रचने में कितना माहिर है।
और ध्यान या मेडिटेशन, आपने जिक्र किया था कि ब्लैकमोर खुद ध्यान करती हैं।
हाँ, ध्यान खास करके विपश्यना या माइंडफुलनेस जैसी जो तकनीकें हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, वो हमें अपने विचारों और संवेदनाओं को बस आते जाते देखने का अभ्यास कराती हैं, बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें मैं या मेरा समझे।
अच्छा,
तो ये एक तरह से ह्यूम की वो बंडल थ्योरी या डेनेट के मल्टीपल ड्राफ्ट्स को सीधे अनुभव करने जैसा हो सकता है, जब हम ध्यान में देखते हैं कि विचार और भावनाएं बस बादल की तरह आती हैं और चली जाती हैं, और कोई एक स्थायी मैं नहीं है जो उन्हें पकड़कर बैठा है, तो स्व के भ्रम का एहसास ज्यादा साफ हो सकता है। ये अवस्थाएं दिखाती हैं कि हमारी सामान्य चेतना भी दिमाग की बस एक खास तरह की सेटिंग है, कोई परम सत्य नहीं।
और आखिर में एक सवाल ये भी उठता है कि ये चेतना विकसित ही क्यों हुई, मतलब इवोल्यूशन के नजरिए से इसका क्या फायदा हुआ होगा?
वेरी बड़ा रहस्य है जिस पर काफी बहस है। एक विचार यह है कि चेतना जटिल फैसले लेने के लिए जरूरी थी, या सामाजिक स्थितियों को समझने के लिए, मतलब ये अंदाजा लगाना कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है, जिसे थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं।
दूसरों को समझने के लिए।
हाँ, या फिर भविष्य की योजना बनाने के लिए। ये सब चीजें हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने और अपने जीन आगे बढ़ाने में मदद करती होंगी। लेकिन एक और संभावना है जो थोड़ी निराशाजनक लगती है।
वो क्या?
उसे कहते हैं एपिफिनोमिनलिज्म। ये कहता है कि चेतना का अपना कोई स्वतंत्र काम है ही नहीं, वो बस दिमाग की बढ़ती हुई जटिलता का एक साइड इफेक्ट है। जैसे कार का इंजन चलता है तो गर्मी पैदा होती है, गर्मी का अपना कोई फंक्शन नहीं है, वो बस प्रक्रिया का नतीजा है।
तो चेतना बस एक धुआं है जिसका कोई काम नहीं,
इस थ्योरी के अनुसार? हाँ, अब ये साबित करना मुश्किल है, पर यह भी एक संभावना है। और अगर ऐसा है तो फिर जानवरों में चेतना का सवाल या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चेतना का सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। तो अगर हम सुजान ब्लैकमोर के इन सारे विचारों को समेटने की कोशिश करें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं?
हाँ, क्या है वो मेन पॉइंट्स?
पहला और शायद सबसे बड़ा कि चेतना एक भव्य भ्रम है। हमारा जो ये समृद्ध लगातार चलने वाला अनुभव है और ये जो स्थायी स्व का एहसास है, ये दिमाग की रची हुई कहानी है, असलियत का सीधा सीधा चित्रण नहीं।
ठीक है, दूसरा?
दूसरा, हमारी अंतर्दृष्टि अविश्वसनीय है। हमें जो अपने मन के बारे में लगता है, हम जो महसूस करते हैं, वो अक्सर गलत हो सकता है। हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।
तीसरा पॉइंट?
तीसरा, स्व एक निर्माण है, कोई एक ठोस स्थायी मैं नहीं है, बस विचारों, संवेदनाओं, यादों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है, एक बंडल है जिसे दिमाग एक कहानी में पिरोता रहता है।
और चौथा?
चौथा, चेतना एक प्रक्रिया है, कोई चीज नहीं, ये कुछ ऐसा है जो दिमाग करता है, जैसे नाचना एक क्रिया है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिमाग के पास है, जब प्रक्रिया रुक जाती है चेतना भी नहीं रहती।
ये चारों बातें तो हमारी पूरी समझ को हिला देती हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना कैसे है? जैसे आपने पहले कहा था, भारत में ध्यान की परंपराएं हैं, बौद्ध दर्शन है, वहां तो अनात्मन यानी स्व के न होने की बात हजारों सालों से होती आई है।
बिल्कुल।
या फिर जब हमारे अपने मन में ही कश्मकश चलती है, कभी लगता है ये सही है, कभी वो सही है, दो अलग अलग आवाजें आती हैं, क्या वो डेनेट के मल्टीपल ड्राफ्ट्स या ह्यूम के बंडल थियोरी की झलक नहीं है? लगता है ना कि अंदर कई किरदार हैं, कोई एक मालिक नहीं।
हाँ, ये बहुत अच्छा नुक्ता उठाया आपने। ये दिखाता है कि ये विचार सिर्फ किताबी या अकादमिक नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो अपने अनुभवों में भी इनकी झलक पा सकते हैं। शायद ये हमें अपने अंदर चल रही उथल पुथल को समझने का, उसे स्वीकार करने का एक नया तरीका दे सकते हैं।
सुजन ब्लैकमोर की कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं। उनके कुछ खास विचारों को अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो एक तो ये है, ये एहसास कि मैं एक स्थायी व्यक्ति हूं जो अनुभवों को जी रहा है, शायद चेतना द्वारा ही बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा यकीन दिलाने वाला भ्रम है।
ये सुन के लगता है कि पैरों तले जमीन खिसक गई।
हाँ बिल्कुल, और ये भी उतना ही गहरा है। चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है या जिसे आप खो सकते हैं, ये एक गतिविधि है जो आप करते हैं, और जब आप इसे करना बंद कर देते हैं तो ये मौजूद नहीं रहती। जैसे नाचना बंद कर दो तो नाच खत्म, सो जाओ तो चेतना जागी हुई खत्म।
एक और विचार जो ध्यान खींचता है, ध्यान अटेंशन चेतना का प्रवेश द्वार जरूर है, लेकिन उस द्वार के पीछे कोई एक देखने वाला या ध्यान देने वाला नहीं बैठा है, प्रक्रिया ही सब कुछ है।
मतलब वो जो ध्यान देने की क्रिया है वही चेतना है, कोई अलग से ध्यान देने वाला नहीं है।
और आखिर में वो सवाल जो पूरी बहस को एक नई दिशा देता है, क्या चेतना की कठिन समस्या इसलिए एक रहस्य बनी हुई है क्योंकि हम चेतना के बारे में खुद ही इतने भ्रमित हैं कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम ऐसी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद वैसी हैं ही नहीं जैसी हम मानते हैं?
ये विचार वाकई हमारी अपनी पहचान, हमारी दुनिया को देखने का नजरिया सब कुछ बदल सकते हैं। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं लगते, इनका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ सकता है।
सही कहा। और ये सुनने में भले ही शुरू में थोड़ा अजीब या असहज लगें, पर इनके कुछ व्यावहारिक फायदे भी हो सकते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सोचें।
हाँ, कैसे?
अगर हम ये समझ पाएं या कम से कम इस संभावना को मान पाएं कि हमारा स्व एक कहानी है और हमारे जो नकारात्मक विचार हैं या जो मुश्किल भावनाएं हैं वो उस कहानी का कोई परमानेंट हिस्सा नहीं है, वो बस मन में आने जाने वाली लहरें हैं, तो शायद हम उनसे थोड़ी दूरी बना पाएं, उनसे अपनी पहचान न जोड़ें, जिससे चिंता, दुख, गुस्सा इन सबको हैंडल करने में मदद मिल सकती है। माइंडफुलनेस या सचेतनता का जो अभ्यास है वो इसी समझ पर तो आधारित है, विचारों और भावनाओं को बस आते जाते देखना, उनसे चिपकना नहीं।
और क्या फायदे हो सकते हैं? शायद आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग।
हाँ बिल्कुल, अगर हमें ये पता है कि हमारी जो पहली प्रतिक्रिया होती है या जिसे हम दिल की आवाज कहते हैं या हमारी अंतर्दृष्टि, वो हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, वो भी दिमाग का बनाया एक नजरिया हो सकता है,
तो
हम शायद ज्यादा रुककर सोचेंगे, हम सबूतों पर ज्यादा ध्यान देंगे, हम अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना सीखेंगे और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे।
ये तो बहुत जरूरी है।
हाँ, और एक और बात, सहानुभूति, एम्पथी, अगर स्व की सीमाएं उतनी पक्की और साफ नहीं हैं जितनी हम मानते हैं, अगर चेतना एक ज्यादा फैली हुई चीज हो सकती है, तो शायद हम दूसरे इंसानों के प्रति या जानवरों के प्रति या शायद भविष्य में बनने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति भी ज्यादा संवेदनशील हो पाए, हम ये समझ पाएं कि चेतना का दायरा हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और अलग अलग हो सकता है।
तो क्या माइंडफुलनेस या ध्यान का अभ्यास इन विचारों को सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझने के बजाय अनुभव करने में मदद कर सकता है?
हाँ, ब्लैकमोर खुद भी यही मानती हैं। ध्यान का अभ्यास इन मानसिक प्रक्रियाओं को, इस भ्रम की प्रकृति को, इस स्व के न होने को सीधे तौर पर अनुभव करने का एक तरीका हो सकता है। तब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह जाती बल्कि एक निजी अनुभव, एक एहसास बन सकती है।
तो इस पूरी चर्चा से, इस गहरी सोच से सबसे बड़ी सीख क्या लेकर जाई जा सकती है? मेरे लिए शायद सबसे अहम है एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सीखना, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, कि हमें अपने मन की सहज समझ पर, अपने इंट्यूशन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये स्वीकार करना कि जिसे हम अपना स्व मानते हैं, अपनी इच्छा मानते हैं, अपना अनुभव मानते हैं, वो शायद हमारे दिमाग की बनाई एक बेहद जटिल पर फिर भी एक कहानी है। ये थोड़ा डरावना लग सकता है पर शायद जरूरी भी है, खुद को कम गंभीरता से लेना।
हाँ, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे शायद ये है कि चेतना हमारे अंदर बैठा कोई छोटा सा कंट्रोलर या दर्शक नहीं है जो दुनिया की फिल्म देख रहा है, बल्कि ये दिमाग की एक फैली हुई, विकेंद्रीकृत, लगातार चलती रहने वाली, कहानी गढ़ने वाली प्रक्रिया है। ये विचार शुरू में हमें अपनी इम्पोर्टेंस से हटाता है जो असहज लग सकता है, लेकिन ये हमें एक परफेक्ट स्थायी स्व को बनाए रखने के बोझ से मुक्त भी कर सकता है। शायद हम अपने विचारों और भावनाओं को थोड़ा हल्का लेना सीख सकते हैं, वो आते हैं जाते हैं, हम वो नहीं हैं।
जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर हमारी चेतना और हमारा स्व का अनुभव वाकई हमारे दिमाग द्वारा रचे गए जटिल भ्रम है जैसा ब्लैकमोर कहती है, तो फिर वास्तविकता की असली प्रकृति के बारे में ये क्या कहता है? हमारी दुनिया की समझ पर, हमारे जीने के तरीके पर इसका क्या असर पड़ सकता है?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।